Namaste to everyone. On behalf of RSMR Greater Houston, it's my distinct pleasure and honor to welcome you to this auspicious occasion, the 26th Foundation Day, or Sthapana Divas, as we call it. On this occasion, I have a special honor and privilege to welcome our chief guest, Dr. Dev Balaji Ramanathan. Dr. Dev Bala, although a busy practicing obstetrician and gynecologist in New York, has been a tireless Vedic Dharma preacher for the past many years in New York, tri-state area. After being officially credentialed as a Siddhant Bhushan in 2005 in India, she has become a very sought-after speaker by various Hindu organizations in the U.S. and in India. She, with the assistance of her brothers and sisters, has converted the former residence of their father, Pandit Dharamjit Jigyasu, located in Flushing, New York, into an ashram called Draupadi Jigyasu Ashram, where Vedic Satsang is held regularly under her leadership. Apart from spreading the holy Vedic teachings through various satsangs, Dr. Dev Bala, for the first time in New York area, has become part of the pastoral care, providing spiritual care to all patients belonging to Hindu faith and admitted to Flushing Hospital. By the grace of God, Dr. Dev Balaji, apart from being a gifted and motivational speaker, which you're going to witness in a few minutes, is also an accomplished musician, singer, writer, and a poet. I must add that behind her very simple persona, she is an amazingly beautiful person who tirelessly gives to the society and to the noble cause of Arya Samaj. With that introduction, I request Devji to come and honor Dr. Dev Bala, I'd like for you to join me in welcoming her to the podium.
Om Kvasvatarudram Mralayakurhasto Yo Asti Be Shujo Jalasha Apabhar Tarapso Daivyasyabhi Numa Vrasha Bachakshamita Muso Nashishna Vayadanti Madhya Stotaram Shatakrato Sukrat Sunoma Gavanindra Mralaya Dhapi Devana Bhava Unmadayat Marutah Udantare Kshamadaya Agna Unmadaya Tvamaso Ma Manu Shochatu. Houston, Arya Samaj ke sab mananiya padadhikari gan, vidva jan, acharya ji, aur jitne bhi karyakarta hain, jinhone is आयोजन के लिए अपना परिश्रम डाला और जो विद्वजन विचारशील लोग यहां पर इस आर्य समाज के स्थापना दिवस के लिए पधारे हैं उन सब का मैं वंदन अभिनंदन और वैदिक अभिवादन नमस्ते से स्वागत करती हूं। आर्य समाज के मंच पर आकर सबसे पहला नाम जो याद आता है वो है दयानंद का, और उस नाम के साथ स्वतः एक और नाम जुड़ जाता है, वह है वेद। अगर दयानंद देह था तो उनकी आत्मा थी वेद। संस्कृत साहित्य के विशाल अंबार में सबसे निचले तह पर वेद पड़े हुए थे। जीवन लीला समाप्त हो जाती थी लेकिन उन तक कोई पहुंच नहीं पाता था। स्वामी जी ने इस स्थिति को बहुत जल्दी ही भांप लिया और उनका वर्चस्व जागा और एक ही झटके में उन्होंने पूरी स्थिति को पलट दिया, और जो नीचे था उसे ऊपर किया, जो ऊपर था उसे नीचे किया, और उनके हाथ वेद लगे। जैसे ही उनके हाथ वेद लगे तो जैसे कि उनको सत्य और झूठ की कसौटी मिल गई हो, और उन्होंने घोषणा कर दी कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, जो उन पर खरा उतरे उसे अपना लो, स्वीकार कर लो, अन्य को छोड़ दो। यह कथन महर्षि दयानंद सरस्वती का ज्ञान का मथा हुआ मक्खन था। जो स्वामी जी ने वेदों के लिए किया है उस ऋण से अनऋण होना असंभव सा महसूस होता है। धर्म का आधार उन्होंने वेदों को बनाया, इसलिए वो वेदत्रयी कहलाए। वेदों वाला वेद उद्धारक नाम से उनको पुकारा जाने लगा। लेकिन महर्षि दयानंद सरस्वती के पहले भी वेद तो थे लेकिन उन तक कोई पहुंच नहीं पाता था। यहां तक कि मध्यकालीन युग के जो आचार्य थे, चाहे वो शंकराचार्य हो, माध्वाचार्य हो, निम्बकाचार्य हो, रामानुजाचार्य हो, कोई वेदों तक नहीं पहुंच पाया, और उन्होंने अपने मतों का आधार वेदांत दर्शन, उपनिषद और गीता को बनाया और वो प्रस्थान त्रयी कहलाए। तो जो वेद का सत्य जो स्वरूप था 19वीं शताब्दी ने महर्षि दयानंद ने मानव जाति के सामने रखा, इसको हम भुला नहीं सकते। महर्षि दयानंद ने विरोध किया उन कुरीतियों का, उन अमानवीय अत्याचारों का, उस पाखंड का, उस अंधविश्वास का और उस अंधश्रद्धा का, लेकिन बहुत बहुत ही मेहनत करके और बड़े धड़ल्ले से सारी चुनौतियों को पार करते हुए, बड़े बड़े अपराध सहन करते हुए स्वामी जी ने वेदों को 19वीं शताब्दी में सच्चे स्वरूप को, सत्य पर प्रकाश, सत्य के अर्थ पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने उनका जो फेमस ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश लिखा कि वेद असली में सत्य स्वरूप, वेद ही जो पुस्तक है वो सृष्टि के प्रारंभ में प्रभु की एक अमर कविता है। जगत गुरु स्वामी दयानंद ने सोया जगत जगाया था, विष का प्याला पी पी करके वेद का नाद बजाया था। चंद लोग ही होते हैं इस दुनिया में सदियों में, चाहो तो खुदा तुम उन्हें बनाते रहना। वैदिक धर्म न कोई मत है, न पंथ है, न संप्रदाय है, न मजहब है, न इज्म है। वैदिक धर्म ईश्वर की वाणी है, सृष्टि का सबसे पहला संदेश है। इस सृष्टि में जितने भी कार्य हो रहे हैं उसकी विद्या जो है उसका नाम वेद है। वेद ऐसे स्तंभ हैं जो कि हमें ज्ञान का प्रकाश दे रहे हैं और पूरे संसार को आलोकित कर रहे हैं। वेद ज्ञान और विज्ञान का स्रोत है। अब प्रश्न उठता है कि धर्म जो शब्द है इसकी क्या डेफिनेशन है, इसकी क्या परिभाषा है, क्योंकि अगर आप शास्त्रों में जाएं तो धर्म का बहुत सरल अर्थ है धारण करना, किस चीज को धारण करना। व्यास मुनि महाभारत में लिखते हैं धारणाद धर्म इत्याहु, यानी जिस चीज को धारण किया जाता है उसे ही हम धर्म कहते हैं। लेकिन जब प्रश्न उठता है कि कौन सी चीज को धारण करना चाहिए, तो उसमें उत्तर में हम यही कह सकते हैं कि जो श्रेष्ठ, सुखकारी, मंगलकारी, कल्याणकारी जो कर्म हैं, जो अच्छी बातें हैं, उनको धारण करके, उन पर आचरण करके, उनको अपने जीवन से संबंधित, मतलब जीवन से उसको लगाकर जीना, उसका नाम है धर्म। तो वैदिक धर्म जो है, ये जो देववाणी है ईश्वर की, इसमें असली में इस धर्म को, इस आचरण को निभाने के लिए जो उपदेश दिए हैं, जो निर्देश दिए हैं, जो आदेश दिए हैं और जो नियम बताए हैं, उन पर चलकर हम धार्मिक बन सकते हैं। धार्मिकता वो नहीं है कि आपने है ना कपड़े पहन लिए, भगवा श्वेत वस्त्र पहन लिए, हाथ में कमंडल ले लिया, कढ़ाऊ पहन ली और 100 बार गायत्री मंत्र का जाप कर लिया, घंटे घड़ियाल बजा दिए। इस तरह का जो इंसान होता है, कर तो रहा है वो कार्य, लेकिन वो धार्मिक नहीं है। धार्मिक इंसान वो होता है जिसके इर्द गिर्द उसके गुण, कर्म और स्वभाव से और उसके परामर्श से कुछ बदलाव आवे, कि कुछ अच्छी चीजों का परिवर्तन लोगों में आवे, तब वो इंसान धार्मिक कहलाता है। तो वैदिक धर्म जो है अपौरुषेय है, ये ईश्वर की वाणी है, लेकिन ये किसी भी, न श्री राम, न कृष्ण, न शिव, न ईसा, न मोहम्मद, न बुद्ध, जरदुस्त, किसी भी महान व्यक्तियों से जुड़ा हुआ धर्म ये नहीं है। और जो इन महान पुरुषों से जुड़े हुए व्यक्ति विशेष धर्म हैं, जिनको इंस्टीट्यूशनलाइज रिलीजन हम कह सकते हैं, वो व्यक्तियों से जुड़े हुए हैं। निकाल तो दो जरदुस्त को, बुद्ध को, महावीर को, तो ये सब है ना लड़खड़ाते रह जाएंगे, उटक पटक पटक चले जाएंगे, क्योंकि इनका आधार नहीं है, ये संप्रदाय हैं। लेकिन वैदिक धर्म का आधार है त्रैत्ववाद, परमात्मा है, प्रकृति है और आत्मा है, तो इस पर आधारित है वैदिक धर्म। तो प्रश्न उठता है कि महर्षि दयानंद ने जब उनका जन्म हुआ, जिस समय, उस समय धर्म, अध्यात्म, सामाजिक, राजनीति के क्षेत्र में समाज चूर चूर हो उठा था, अंधकार से छाया हुआ था, और 19वीं शताब्दी में भारत के अलावा विश्व के अन्य देश भी धार्मिक, राजनैतिक और सामाजिक विघटन से जूझ रहे थे। और उन देशों के अलावा कुछ ऐसे देश भी थे जो बड़े शक्तिशाली थे, बलशाली थे, तो उन्होंने देशों पर आक्रमण करना शुरू किया, गुलाम बनाना शुरू किया, और उनमें सबसे प्रमुख था ब्रिटेन। और अन्य देशों को तो गुलाम बनाया ही ब्रिटेन ने, लेकिन भारत को नहीं छोड़ा, क्योंकि भारत जबकि उस समय समृद्धि के शिखर पर था, लेकिन 2378 जातियों में बंटा हुआ था। और यही कारण था कि मुसलमानों ने हम पर आक्रमण किया और हमें हराया, और फिर अंग्रेज चले आए। कारण उसका था ये जातिवाद, ये ऊंच नीच की भावना, और इस जातिवाद की वजह से कुछ छोटे बड़े शासक भी वहां पर थे, और इन शासकों में आपस में भी संघर्ष होता रहता था, यहां तक कि मुसलमानों की अपनी सेना भेजकर उनकी सहायता की और अपने ही देश के शासकों के विरुद्ध लड़ाई की। इस तरह से हमारा देश जो था वो इस राजनैतिक, कहना सही, अनैतिकता में और इस जात पात में, ऊंच नीच की भावना में ऐसा जूझ रहा था कि उस समय टुकड़े टुकड़े भारत के हो गए। और मुसलमानों ने आक्रमण किया उन जगहों पर, उन मंदिरों पर जहां की देवी देवताओं की मूर्ति रखी जाती थी, वहां देवी दासियां रखी जाती थी, उन पर नारी उत्पीड़न होता था, शोषण होता था, नशाखोरी होती थी, पाखंड होता था, अंधविश्वास था, अंधश्रद्धा था, और उसका परिणाम यह हुआ कि कितने तरह के सांप्रदायिक प्रारंभ हो गए। और उसमें बौद्ध धर्म भी और जैन धर्म भी, जो कि नास्तिकवाद धर्म है, इसलिए ना हिंदुओं में और बौद्धों में और ये जैनियों में कभी एकता रही नहीं। महात्मा बुद्ध ने जब देखा कि पशु बलि हो रही है, मनुष्य की बलि चढ़ाई जा रही है, तो जो वेद के नाम से और प्रभु के नाम से, तो उन्होंने वेद को न स्वीकारा, ईश्वर को भी नहीं स्वीकारा, और उन्होंने अपने तरीके से लोगों को आदेश और जो उपदेश उन्होंने दिए बौद्ध धर्म के, वो सब आप जानते हैं। और इसके अलावा इन देवी देवताओं के इतना प्रादुर्भाव हुआ इन देवी देवताओं का कि अन्य अलग अलग संप्रदाय तो बन गए, लेकिन आपस में भी इतनी फूट थी, इतनी घृणा थी, इतना रोष था इन लोगों में कि जो वैष्णवाइट्स थे वो शैवाइट्स के यहां नहीं जाते थे, और शैवाइट्स जो शिव को मानते थे वो विष्णु के यहां नहीं जाते थे, आपस में शादी विवाह भी नहीं होते थे, आपस में ऐसी घृणा थी। मैं साउथ में रह चुकी, आज भी दक्षिण भारत में आप देखेंगे कि जो शैवाइट्स हैं वो वैष्णवाइट्स हैं, आपस में एक दूसरे के घर खाना तक नहीं खाते हैं, ऐसे दुश्मन बने हुए हैं। इस तरह का वेद के और सनातन धर्म के आड़ में ये पाखंड, ये अंधविश्वास फैला हुआ था। इसके अलावा जितने नामधारी सन्यासी थे तथा कथित ब्रह्मचारी थे, उन्होंने कपोल कल्पित अपने पुराण लिख डाले, कुछ धर्मशास्त्र लिख डाले, और लोगों को मनाना शुरू कर दिया कि जो इन किताबों में लिखा है वही सत्य है। जब महर्षि दयानंद ने इस चीज को देखा, इस परिस्थिति को भांपा, पूरे भारत में घूमे और मानव जाति का जो अत्याचार हो रहा था, जब वो देखा, तो उन्होंने लोगों को बताया कि ये जो चीज हो रही है सनातन धर्म के आड़ में, इसके विरोध में हमें लड़ना है। ये परिस्थिति भारत में महाभारत के बाद हुई थी। महाभारत के बाद, महाभारत के समय बहुत से वीर योद्धा, इतने धर्माचार्य, इतने देश प्रेमी और पढ़े लिखे लोग, उन्होंने वीर योद्धा थे, वो सब मारे गए, और जो बचे वो अनाथ बच्चे थे, कुछ विधवाएं थीं, अनपढ़ लोग थे, वेद विरुद्ध बातें होने लगी, और वेद के विरुद्ध युक्त जो भाषण होते थे वो पूरे पाखंड से और अंधविश्वास से भरे हुए थे। लेकिन उस समय भी कुछ ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने ये घोषणा की कि भौतिकवाद और अध्यात्मवाद दोनों के समन्वय से, द बैलेंस बिटवीन द मेटीरियलिज्म एंड स्पिरिचुअलिज्म से ही मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, सफलता को प्राप्त कर सकता है, परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, आनंद की प्राप्ति होती है। क्योंकि जीवन का उद्देश्य हमारे शास्त्रों में चार भागों में बांटा गया है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में भी भौतिक और अध्यात्मता का समन्वय है। तो इसी उद्देश्य को लेकर महर्षि दयानंद ने 7 अप्रैल 1875 में भारत देश के बंबई शहर स्थान काकड़वाड़ी में सबसे पहला ये आर्य समाज की स्थापना की, और उन्होंने ऋग्वेद का मंत्रांश, जो घोष मंत्र दिया था, वो है कर्णवंतो विश्वमार्यम, के पूरे संसार को आर्य बनाते चलो। ऋग्वेद का मंत्र है इंद्रम वर्धन्तो अप्तुरः कृणवन्तो विश्वमार्यम् अपग्नता अराणः। इसका अर्थ है कि हे सत्कर्मों के पुण्य सज्जनों, परमेश्वर शालियों को आगे बढ़ाते हुए और जो पापी हैं, अदानी हैं, उनको परे हटाते हुए, उनका नाश करते हुए पूरे विश्व को आर्य बनाते चलो। हम भी ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि सबसे पहला उद्देश्य जो आर्य समाज की स्थापना का था, वो भौतिकता, भौतिकवाद और अध्यात्मवाद का समन्वय था, कि हमें भी ऐसी शक्ति दे हे प्रभु कि हम इस आदर्श को लेकर पूरे विश्व में लोगों को विनाश के मुख से अलग हुए सुख और शांति के पथ पर खुद चलें और लोगों को भी उस तरह हम ले चलें। तो सबसे पहला उद्देश्य आर्य समाज का था भौतिकवाद और अध्यात्मवाद का समन्वय। आप और हम, मनुष्य शरीर मिला है, यह भी भौतिकवाद और अध्यात्मवाद का समन्वय है। कैसे? ये भौतिक शरीर जो है, दिस इज भौतिकवाद, और जो आत्मा है वो अध्यात्मवाद है। इसीलिए भौतिक शरीर को कहा है कार्य प्रकृति शरीर, और आत्मा को कहा है कारण शरीर। और वेद भी कहता है अंधेन तम ये प्रविशंति अविद्या मुपासते ततो भूयवते तमो यौ विद्यागुमृताः। यानी कि जो मनुष्य इस कार्य प्रकृति शरीर यानी भौतिक शरीर को लेकर और कारण शरीर आत्मा को लेकर दोनों को समझते हुए जब चलता है अपने जीवन की यात्रा पर चलता है, वही मनुष्य जो है मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। क्यों कि इस कार्य प्रकृति शरीर से आप मृत्यु को पार कर सकते हैं और कारण शरीर से आप अमर तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। तो मृत्यु को पार करना क्या होता है? अरे जीवित है तो यहां मृत्यु कहां से आ गई? तो प्रश्न उठता है, प्राय मनुष्यों को ये समझाना पड़ता है। मृत्यु का कहते हैं ना लिविंग डेथ, मृत्यु का अर्थ होता है अशांति, क्लेश, अभाव, अज्ञानता, गिरावट इत्यादि। ये मृत्यु है। इस बीमारी से ये छह, और इसका कारण है हमारे छह शत्रु जो हमारे मन के अंदर हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या और अहंकार। जब तक हमारे मन से ये विकार नहीं हटेंगे तब तक हम किसी भी तरह का समन्वय, भले ही वो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का हो, वर्ण व्यवस्था का हो, आश्रम व्यवस्था का हो, कर्म प्रधान का हो, क्योंकि वैदिक धर्म समन्वय प्रधान धर्म है। तो समन्वय प्रधान धर्म के लिए सबसे पहले हमें मेटीरियलिज्म और स्पिरिचुअलिज्म जो है उसको बैलेंस में रखना होगा, वही मनुष्य जो है सफलता को प्राप्त कर सकता है। और अगर हमने इस मनुष्य जीवन में ये नहीं किया तो परलोक की तो बात ही छोड़ दो, क्योंकि वैदिक धर्म जो मानता है उन तत्व को मानते हुए वो अपने जीवन में उसको चरितार्थ करता है, वही मनुष्य जो है मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। लेकिन इस जन्म में अगर हमने ईश्वर को न जाना न माना, यानी अपने को नहीं पहचाना, तो तुम ईश्वर को साक्षात्कार कैसे कर सकते हो? ये चेद वेदी दत्त सत्यमस्तिनो जेदिया वेदी न महंत विनिष्ठ भूतेषु भूतेषु विचिंत धीरा प्रत्येष्मा लोकाद्रता भवंती। आज की हालत आप देखिए, वक्त कैसा आ गया है दोस्तो, आदमी घबरा गया है दोस्तो, आदमी को जोड़ने के नाम पर आदमी बांटा गया है दोस्तो, कब तलक टुकड़े करोगे धूप के, आज वो मसला उठा है दोस्तो, जो कभी जो सरे बाजार करता कत्लता तख्त पर बैठा हुआ है दोस्तो, सत्य को तो जब साबित कर दिया सत्य को लुक दे दिया है दोस्तो। सत्य का प्रचार सतयुग में होता था, राजा भी करते थे, प्रजा भी करते थे, लेकिन आज असत्य का प्रचार हो रहा है, अश्लीलता का प्रचार हो रहा है, क्योंकि सत्य को प्रचार करने वाले भवनों में बैठे हुए हैं, प्रमाद और आलस में बैठे हुए हैं। हम बड़ा गर्व करते हैं कि हमने एक आर्य समाज बना लिया, हमने बड़ा भवन बना लिया, और यहीं बैठे बैठे नारा लगाते रहते हो कृणवंतो विश्वम आर्यम। अरे इन दीवारों से जो घृणा की दीवारें हैं उनको ज्ञान के हथौड़ों से हमें तोड़ना होगा, अहम को छोड़ना होगा, अहंकार को तोड़ना होगा, तब जाके हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। आर्य समाज का उद्देश्य यही है कि निकलो और जो प्रचार। देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहती हूं, प्रश्न भी पूछना चाहती हूं कि आर्य समाज की स्थापना को 142 वर्ष हो गए हैं, लेकिन आप हृदय में हाथ रख के पूछिए अपने आप से, क्या आर्य समाज का निर्माण हुआ है? उत्तर है, हकीकत है, नहीं। आर्य समाज का निर्माण का अर्थ होता है कि हमने जवानों को निर्मित नहीं किया है, हमने आर्य समाज के भवनों को निर्माण नहीं किया है, मतलब यह है हमने वेद पाठी तैयार नहीं किए हैं, हमने प्रचारक तैयार नहीं किए हैं। और आज के जो पुरोहित है, एक बार की बात मुझे याद आती है, भारत में मैं थी तो वेद सप्ताह था, तो मैं वहां पे मैं प्रवक्ता थी, तो मैंने कहा कि प्रलोभन में आकर, दक्षिणा के लालच में आकर, बिना अध्ययन के, बिना स्वाध्याय के ये पंडित एक झोला लेके चले जाते हैं और क्या नाम है, संध्या हवन करके चले आते हैं और कहीं जहां जाना है वहां जाते नहीं। तो एक शास्त्री जी उठे और कहने लगे कि डॉक्टर साहिबा, मैं तो अभिनेताओं के यहां जाता हूं, मैं तो राजनेताओं के यहां जाता हूं। तो मैंने कहा तुम वहां जाके करते क्या हो भाई आप? तो कहे संध्या हवन करवाता हूं। तो मैंने कहा आपके परामर्श से क्या उनकी विचारधारा बदली, क्या उनकी समस्याओं को आप सुलझा सके वहां सद्य हवन करने के पश्चात, तो बोले उनको कौन सुधार सकता है। तो मैंने कहा कि आप तगड़ा लिफाफा के लिए वहां गए थे, आपको यानी वैदिक विचारधारा का प्रचार करने नहीं गए थे, क्यों कि वहां तो धोबी भी जाता है, नाई भी जाता है, सब्जी वाला भी जाता है, दूध वाला भी जाता है, अगर आप चले गए तो कौन सी बड़ी बात आपने कर दी। प्रश्न उठता है कि हमें नव निर्माण करना है और उसमें हमें युवक और युवतियों की जरूरत है, क्योंकि इन युवक युवतियों की जरूरत तो है, इनकी कमी एक भविष्य का बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, लेकिन ये बच्चे जो हमारे हैं ये बुजुर्गों के संग बैठना पसंद नहीं करते, ये ओल्ड मैन ओल्ड लेडी कह के हमको क्या हमें नर्सिंग होम की तैयारी कर देते हैं। प्रश्न है, बड़ों के पास होश है, अनुभव है, योजनाएं हैं, लेकिन नव युवकों के पास जोश है, कल्पनाएं हैं और अनुभव नहीं है। इसलिए हमें चाहिए कि इनको निर्मित करना है बच्चों को, तो इनको वेद पाठी बनाना होगा, इनको बुजुर्गों के संग रहना होगा, क्यों कि अगर हम समझ लीजिए आपने ह्यूस्टन में बहुत सुंदर ये बनाई है एक, मैं मुझे तो ये 7 स्टार लगता है, क्योंकि मैं तो बहुत कम छोटे स्थल की महिला हूं, मैं यहां पे आती हूं तो मुझे लगता है काश मेरे पास इतनी जगह होती, कम से कम इसकी हवन 100 थी होती। प्रश्न ये उठता है कि प्रचार हम भवनों के अंदर बैठ के नहीं कर सकते हैं, और हम अपने पूर्वजों की उपलब्धि पर भी हम उसका क्रेडिट नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अभी तक हमने उनका ऋण चुकाया है ही नहीं, हम खुद आर्यत्व में रंगे नहीं हैं। अब आप समझिए, सुनिए, कितने यहां मंदिर होंगे, अगर आप 100 बीघा जमीन में 1 किलो बीज डाल दोगे तो क्या पूरी खेत की उपजाऊ हो जाएगी? कभी नहीं होगी। अगर आप चीनी, 1 चम्मच चीनी सागर में डाल दोगे तो क्या सागर का पानी मीठा हो जाएगा? कभी नहीं होगा। चीनी चीनी कह दोगे तो क्या चाय मीठी हो जाएगी? नहीं होगी। H2O कहने से आपकी प्यास नहीं बुझेगी। प्रश्न ही उठता है कि हमें जितनी भूमि है, जितना स्थल है, हमें कोशिश करनी होगी कि कोई आपके ये सारे समाज में नहीं आएगा बाहर वाला, आपको जाना होगा बाहर। और कोई भी समाज, याद रखें कि किसी भी समाज को संगठित होने में, संगठनात्मक होने में, स्थिर होने में क्या लगता है, कोई भी समाज अगर गठित आप चाहते हैं, सुव्यवस्थित आप चाहते हैं, तो उसका जन्म होता है उच्च विचारों से, और स्थिर होता है शुभ आचरण से, और उसका विस्तार होता है प्रचार और प्रसार से। आप आर्य समाज का प्राण क्या है? उपदेशक वर्ग आर्य समाज का प्राण है, लेकिन उपदेशक वर्ग में इतनी कमी आ गई है, तो हमें दशा देखकर दिशा बदलनी होगी। और हमारे जितने भी जितने पुरोहित हैं, पंडित हैं, गिने चुने होंगे जो वास्तव में आर्य समाज के वैदिक विचारधारा के प्रचार में लगे हुए हैं, क्योंकि कोई भी नया सदस्य नहीं बनता है। कारण क्या है? लोग आर्य समाज के मंत्री और अध्यक्ष और न जाने सारे पद तो ले लेते हैं, लेकिन इतनी कम लघु गणना होती है। इतवार के समय संध्या हवन होता है 25-30, ह्यूस्टन को छोड़ के भी, ड्यू अपॉलोजीज के, ज्यादातर लोग 25-30 से कोई ज्यादा आता नहीं है। आपको उनके पास जाना होगा, क्यों कि आज धरती पर पल पल करके यह विश्व युद्ध और आतंकवाद की ओर बढ़ रहा है, और सब हमला किस पे करने को तैयार हैं? हिंदुओं पर। तो इसलिए हम हिंदू जो विकलांग है उसको सकलांग बनाना है। मुझे याद आता है उत्तम शरद चंद्र की ये शेर, कहना इलाही हम तो जो मरहम लगाने के लिए उत्सुक था, इलाही हम मरहम लगाना चाहते हैं लेकिन मरहम लगाने वाले को लोग कातिल समझते हैं, इलाही इस तरह तो घाव को मरहम नहीं लग सकता है। तो हमें हिंदुओं को जो कि एकदम वेद का नाम लेके सनातन धर्म के आड़ में, वेद की आड़ में, ओम की आड़ में जो पाखंड उन्होंने मचाया हुआ है, वो वेद के पास है लेकिन उसके विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, उनको हमें अपनी तरफ आकर्षित करना होगा। तो मैं समझती हूं भले ही आप किसी को आर्य समाजी बना पाए या न बना पाए, लेकिन उनकी जो वैदिक विचारधारा है उससे आप उनको फेमिलियर कर सकते हैं, और वैदिक विचारधारा बदलेगी तो मनुष्य वास्तव में वैदिक ढंग से अपना जीवन बिताएगा। क्योंकि सत्य तो लुट गया सरेआम सपन बाकी है, शबनम की जगह तपन बाकी है, मेरी आंखें हैरत से हैं परेशान, इंसान की जगह कफन बाकी है। तो आज की जो हालत है, आज का जो दृश्य हम देखते हैं भारत में, तो जरूरी है हमारे लिए कि हम उसको बदलें। और इस विदेश में आकर, इस नगरी में आकर, हम कहते तो हैं कि हमने आर्य समाज की स्थापना की हो गई, लेकिन आर्य समाज का निर्माण हुआ ही नहीं है। वर्ण व्यवस्था ठीक नहीं हुई, संगठनात्मक आर्य समाज नहीं बने हैं, हमारे पास वेद पाठी नहीं है, हमारे बच्चों को ठीक तरह से सिखाने का कोई ढंग नहीं है, और सब एक प्रलोभन में, जिस नुक्कड़ पर आप जाइए जीवन के, आपको वहां पर लोभ, प्रलोभन और आशाएं ही दिखेंगी, और उन आशाओं से, प्रलोभनों से मनुष्य इतना प्रभावित हो जाता है कि असली सत्य का पथ भूल जाता है। कहने का मतलब यह है कि हमें, आर्य समाज भागेगा तो हिंदू समाज चलेगा, और आर्य समाज चलेगा तो हिंदू समाज खड़ा होगा, आर्य समाज खड़ा होगा तो हिंदू समाज बैठेगा, अगर आर्य समाज बैठ गया तो समझ लो सब कुछ खत्म हो गया। इसलिए हमें आर्य समाज के लिए, मैंने वास्तविक में अस्पताल की, मैं पास्टोरल केयर कैसे बनी मैं आपको बताती हूँ। मैं पढ़ती बहुत हूँ, मुझे पढ़ने का शौक है, मैं चर्च में बैठ के पढ़ा करती थी, और उस वहां पढ़ के ही मैंने अपने एग्जाम्स पास किए। तो मैं वहां चर्च में बैठती थी, तो मैंने नाम देखा पादरी सो एंड सो, फादर सो एंड सो, कहना कि वो सरमन वगैरह देते थे, लोग आते थे वहां पे, पेशेंट जो बैठ पाते हैं, जो व्हील चेयर पे इत्यादि। फिर 3 महीने बाद देखा इमाम सो एंड सो, मैंने कहा हद हो गई भैया, यहां तो मुसलमान भी आके मुल्ला बैठ गया, मैंने कहा हम क्या कर रहे हैं। तो मेरे मन में वो अंदर एक अग्नि जैसी ज्वाला जगी, मैंने कहा कि हमें भी करना होगा, ऑल द साउथ एशियन पेशेंट वो भी मतलब कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो हमें उनकी सहायता करनी पड़ेगी। इसलिए मैंने अप्लाई किया, बड़ा विरोध हुआ, बहुत ज्यादा विरोध हुआ, तो मैंने कहा डरिए मत मुझसे, मैं कोई पैम्फलेट्स लेके आके यहाँ कन्वर्शन नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरे साउथ एशियन पेशेंट्स को भी जरूरत है कि उनके लिए कोई आके प्रार्थना करे। एंड दैट इज हाउ आई बिकेम द पास्टोरल केयर फॉर 24 आवर्स ऑफ फ्लशिंग हॉस्पिटल, एंड आई एंजॉय इट। माँ बाप को डाल देते हैं अस्पतालों में, बच्चे तक देखने नहीं आते हैं, क्या उनको जरूरत नहीं है थोड़े करुणामय बातों की? जरूरत है, वही धर्म है, हमें करना चाहिए, ऐसा मैं समझती हूँ। क्योंकि असली धर्म ये नहीं है कि आप हवन कर लीजिए और क्या नाम आहुतियां डाल दीजिए, थोड़े भजन गा लीजिए, लेकिन हमें बिल्कुल निपक्ष होकर हमको निकलना है। और इतना मैं आपको बता दूं, महर्षि दयानंद ने कहा था 60% सब संप्रदायों में एक ही चीज है, एक ही चीज लिखी हुई है, मानवीयता से जो जुड़ी हुई बातें वह लिखी हुई हैं, लेकिन 40% में जो मतभेद है, बुद्ध जीवों को निरपक्ष होकर बैठना होगा और सत्य को जो है उसको आगे रखना होगा, क्योंकि सत्य की जीत हमेशा होगी। हमारे आर्य विद्वानों ने बड़ा विरोध किया, कैसे किया? प्रश्नों की बौछारों से विरोध किया, तर्क और बुद्धि से विरोध किया, इन पाखंडियों का हाथ से नहीं, हाथ में तलवार लेकर नहीं किया। तो देखिए उनका विरोध का तरीका तर्क और बुद्धि का था, क्यों उस समय जो धार्मिक गुरु थे वो कहते थे प्रश्न मत पूछो, संदेह मत करो, जो हमारे धर्मशास्त्र में लिखा है उसी को मानो। और फर्क इतना था महर्षि दयानंद में और इन धार्मिक गुरुओं में कि महर्षि दयानंद जो थे उन्होंने कहा कि धर्म जो है जो तर्क और बुद्धि पर प्रखर और मतलब पास हो जाता है, तर्क और बुद्धि पर जो निखरता है वही धर्म है, और दूसरा जो जो कि तर्क और बुद्धि पर फेल हो जाता है वह मूर्खता है। और उन धार्मिक गुरुओं में और दो तरह के लोग हो गए थे उस समय, एक तो वो लोग थे जिनको की पाखंड, अंधविश्वास और अंधश्रद्धा से अपना स्वार्थ जो है वो उनका पूरा हो रहा था, और दूसरे लोग वो थे कि उनको इसकी आदत पड़ चुकी थी। तो आप इमेजिन करिए कितना विरोध महर्षि दयानंद ने सहा, और तब जाके जो कार्य उन्होंने प्रारंभ किया है, अंधविश्वास, पाखंड और ये अंधश्रद्धा वगैरह, इन सब सब से हमें भी जूझ रहे हैं और जूझते रहेंगे। अगर हम आज भी सतर्क नहीं होंगे तो ये जो विदेशी हैं ये योग से योगा बन गए, राम से रामा कहने लगे और हम फिर से इनके मानसिक गुलाम हो जाएंगे। इसलिए हमें धड़ल्ले से बाहर निकलना होगा और इन दीवारों से जो घृणा की दीवारें बन गई हैं और अहम को छोड़ना होगा, अहंकार को ठुकराना होगा और नीति शास्त्र के अनुसार तू ही है परमेश्वर इसको मानकर हमें आगे चलना होगा। तो आर्य समाज का जो उद्देश्य है उसका वो वैदिक विचारधारा है और वैदिक विचारधारा को लेकर ही हमें आगे चलना है, ऐसा मैं मानती हूँ। और जब तक हम इन दीवारों से बाहर नहीं निकलेंगे, और इसके लिए एक एक एकता की जरूरत है। मैं ट्राई स्टेट एरिया में न्यूयॉर्क में रहती हूँ, लेकिन मैं कभी नहीं देखती कि जितने वहाँ आर्य समाज हैं कभी मिलके कोई सभा करें, कोई आयोजन करें, कभी नहीं। बन जाते हैं प्रेसिडेंट दो दो साल के लिए, बस बैठे रहते हैं, हाँ एक हवन कर लिया, कुछ स्थापना दिवस कर लिए, खत्म हुआ काम। और हम लोग तो कुछ है ही नहीं वहाँ पे, मैं तो ये भी नहीं जानती हूँ कि कौन क्या है वहाँ पे, इतनी भी हम में एकता नहीं है तो ऐसे कैसे काम चलेगा। आपको कुछ बातें मेरी बुरी लगी होंगी लेकिन सत्य कहना मेरा धर्म है, क्योंकि हमारे कितने महापुरुष हुए, कितने महाआचार्य हुए, कितने देश प्रेमी हुए, किन्होंने अपनी मन की पवित्रता को रखकर धर्म की रक्षा की, वो उन्होंने अपना जीवन भी बलिदान दे दिया। उस मौत को हम याद करें कि वे कौन थे। हम अपने पूर्वजों की उपलब्धि के लिए क्रेडिट नहीं ले सकते हैं क्योंकि हमने योगदान नहीं दिया है। उस राशि से हम भवन बना लेते हैं लेकिन उस राशि के ब्याज से हमें अच्छे पुरोहित तैयार करने होंगे। ए दुनिया बता इससे बढ़कर फिर और हकीकत क्या होगी, जहाँ दे दी तलाशे हक के लिए फिर और हकीकत क्या होगी। यूं तो हर रात की तारीखी देती है प्याम उजाले का, जिससे ये जहां पुर नूर हुआ उस रात की कीमत क्या होगी। औरों के लिए मरने वाले मर कर भी जिंदा रहते हैं, खंजर भी चलाए अपनों ने, जहरें भी पिलाए अपनों ने, अपनों की ऐसा कम है क्या, औरों से शिकायत क्या होगी। सदियों की खिजा के बाद खिला एक फूल उसे भी तोड़ लिया, कलियों के मसलने वालों से फूलों की हिफाजत क्या होगी। इस हिम्मत जुर्रत के सदके इस जज्बा शादिक पे कुर्बान, हक की खातिर लड़ने वालों से बातिल की बगावत क्या होगी। तो ऐसे महापुरुष हुए, क्या हम उनके मार्गदर्शक थे वो हमारे, उस मार्गदर्शन पर हमें चलना होगा और आर्य समाज को बचाना होगा। अगर मानवीयता को बचाना है, अगर मानवीयता को बचाना है तो हमें वैदिक सिद्धांतों पर चलना होगा, वैदिक वेद में बताए हुए नियमों पर चलना होगा। वैदिक ज्ञान के अलावा और कोई भी ऐसा इज्म नहीं, इल्म नहीं, मजहब नहीं जो हमें ये सिखा दे कि वास्तव में मनुष्यत्व से देवत्व की तरफ और देवत्व से मुमुक्षुत्व की तरफ, यानी मोक्ष की प्राप्ति और उसके बाद परमात्मा की प्राप्ति का तरीका एक ही है, वो है वैदिक धर्म। तो मैं समझती हूँ कि वैदिक धर्म और वैदिक संस्कृति को लेकर हमें आगे चलना है। और एक चीज मैं कहकर मैं अपनी बातों को समाप्त करती हूँ कि हमें हरेक को अपने जीवन का उद्देश्य ढूंढना पड़ेगा, और ढूंढने से कुछ न कुछ प्राप्त जरूर होगा, कुछ न भले ही वो संपूर्ण न हो, लेकिन यह हमारी दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि हम उद्देश्य को वास्तव में जानना चाहते हैं कि नहीं, क्योंकि यह मनुष्य एक जीवन की यात्रा है। मैंने जब खुद में ही चंद कमियां ढूंढ ली, मैंने जब खुद में ही चंद कमियां ढूंढ ली, मुझे कुछ ऐसा लगा कि मैंने खुशियां ढूंढ ली। दूर तक कांटे बिछे थे जिंदगी की राह में, ढूंढने वालों में उनमें फिर भी कलियां ढूंढ ली। एक दिन एक पल को जब मेरे ही अंदर मिल गया मैंने उस छोटे से लम्हे में सदियां ढूंढ ली। जब मुझे मेरी ही खुशियां दे न पाई जिंदगी, तब मैंने उसकी खुशी में आपकी खुशी में खुशियां ढूंढ ली। तो मनुष्य को खुश रहने का तरीका एक है धर्मात्म अध्यात्म। तो अध्यात्म जो है वो मनुष्य को बहुत आगे तक ले जाता है। तो वहां अपने वैदिक धर्म वैदिक संस्कृति से जुड़े रहें, इर्द गिर्द जो कुछ हम करें हम वैदिक संस्कृति को न छोड़ें, यही आदेश हमें दिया हुआ है। क्योंकि आर्य समाज वेद वैदिक ज्ञान आयुर्वेद योग दर्शन शास्त्र ये ज्ञान जो है हर वर्ग हर वर्ण तक पहुंचाने का एक कृत संकल्प है। और जितना भी अमानवीय अत्याचार है भ्रष्टाचार है व्यभिचार है अंधविश्वास है पाखंड है नारी उत्पीड़न है शोषण है नशाखोरी है उसके विरोध लड़ने वाला एक जजारू एक आंदोलन है। और वह विनाश के मुख से पूरे विश्व को निकाल सकता है अगर वेदों के पथ पर हम चलें और हम आर्यत्व के रंग में रंग जाएं, तब जाके हम कह सकते हैं कि हम आर्य समाजी हैं। नहीं तो आर्य समाज में आकर हम आर्य समाजी नहीं हो जाते हैं, आर्यत्व के रंग में हमको रंगना होगा। मैं न जाने क्या कह गई, लेकिन इतना जरूर है कि भ्रमते भ्रमते देह रथ हुआ है चकनाचूर, प्रीतम नगरी जीव रे अभी बड़ी है दूर। अगर हम इसी तरह रहेंगे तो फिर जीवन तो बीतता ही चला जाता है, जीवन तो एक यात्रा है, फिर अपना वो बुरा बिस्तरा बांध के सबको जाना है। लेकिन धर्म ऐसा है जो हमें परमात्मा से जोड़ता है। तो इसीलिए शारीरिक सामाजिक और आत्मिक उन्नति जो साधन बताया, पंच महायज्ञ विधि के बारे में बताया, 16 संस्कारों के बारे में बताया, ये हमारी दिनचर्या और जीवन की चर्या होनी चाहिए। इतना कहकर मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। अगर कुछ न्यूनता रह गई हो कुछ अधिक कह गई हो तो आपसे माफी चाहती हूँ। मेरी शुष्क बातें आपने सुनी उसके लिए मैं हृदय की गहराई से आपको धन्यवाद देती हूँ। फिर कब मिलना हो ना हो लेकिन
और हमारे साथ हमारे समाज के स्थापना दिवस में सम्मिलित हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।